पृष्ठ संख्या 190, ग्वालियर की परंपरा, साहित्य एवं अन्य ललित कलाओं का शताब्दियों तक ग्वालियर गढ़ रहा है। ग्वालियर के तोमर वंश के महाराजा मान सिंह सन 1486 से 1518 स्वयं उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। ध्रुपद शैली को प्रचार में लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। देश के कई प्रसिद्ध गायक वादक उनके दरबार को सुशोभित करते थे। अपने दरबारी कलाकारों की सहायता से राजा मान सिंह ने मान कुतूहल नामक ग्रंथ की रचना की। उनकी गुर्जरी रानी मृगनयनी भी अच्छी कलाकार थी, जिनके नाम से गुर्जरी तोड़ी राग प्रसिद्ध है। मुगल बादशाह अकबर के दरबारी गायक मियां तानसेन की जन्मभूमि ग्वालियर थी। उनकी समाधि ग्वालियर में ही है, जहां प्रत्येक वर्ष संगीत महोत्सव में संगीतकारों का मेला लगता है। 18वीं शताब्दी के पश्चात ग्वालियर पर सिंधिया राजाओं का राज्य हुआ। वे कला के पारखी एवं कलाकारों के सच्चे कद्रदान थे, अतः अनेक उच्च कोटि के संगीतकारों का वहां उदय हुआ। इनमें से कुछ कलाकार ग्वालियर दरबार के आश्रित थे, कुछ लोग ग्वालियर के निवासी थे, कोई राजाओं के आमंत्रण से अपनी कला पेश करने आते थे, तो कोई ग्वालियर दरबार की कीर्ति गाथा सुन करके अपने आप चले आते थे। पिछली 5-6 शताब्दियों से उच्च कोटि के सैकड़ों कलाकार ग्वालियर में हो गए हैं, जिनमें बड़े मोहम्मद खां, उस्ताद नत्थन पीर बख्श, उस्ताद हद्दू खां, उस्ताद हस्सू खां, उस्ताद नत्थे खां, उस्ताद निसार हुसैन खां, उस्ताद रहमत खां, उस्ताद छोटे मोहम्मद खां, उस्ताद बंदे अली बिनकार, एकनाथ पंडित, शंकर राव पंडित, कृष्ण राव पंडित, पंडित विष्णु दिगंबर के गुरु पंडित रामकृष्ण बुआ इचल करंजीकर, उस्ताद हाफिज अली खां, अमीर खां सितार वादक, सादत खां सरोद वादक, गुलाम अली सरोद वादक, पंडित अनंत मनोहर जोशी, पंडित बालकृष्ण शास्त्री, पंडित भैया जोशी, प्रोफेसर नारायण लक्ष्मण गुणे, भैया साहब मावलंकर, पंडित राजा भैया पूंछ वाले, बाला साहेब पूंछ वाले, कृष्ण राव दाते, केशव राव सुरंगे तथा तबला वादक के क्षेत्र में सर्वश्री पंडित जोरावर सिंह, सुखदेव सिंह, गणेश उस्ताद, दयानंद उस्ताद, दाताराम उर्फ दान सहाय, पर्वत सिंह, माधव सिंह, विजय सिंह, गोपाल सिंह, मिट्ठू खां तबला वादक आदि प्रमुख हैं। ग्वालियर के ध्रुपदीय पंडित नारायण स्वामी तो इतने श्रेष्ठ कलाकार थे कि उन्होंने मृदंग सम्राट कुदव सिंह महाराज को परास्त कर दिया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। सुप्रसिद्ध मृदंगाचार्य कुदव सिंह सिंधिया राज के आमंत्रण से प्रायः दतिया से ग्वालियर चले आते थे, और कुछ वर्षों तक तो वे ग्वालियर में रहे भी, किंतु दतिया महाराज के साथ उनका संबंध आजीवन रहा। महाराजा दौलत राव सिंधिया, महाराजा जान कोजी राव सिंधिया, महाराज माधव राव सिंधिया तथा महाराजा जियाजी राव सिंधिया संगीत के परम अनुरागी थे। इन सबकी व्यक्तिगत रुचि के कारण ग्वालियर में कलाकारों को सदैव प्रोत्साहन मिला तथा धन सम्मान एवं कीर्ति प्राप्त हुई। गायक उस्ताद नत्थे खां को महाराज जियाजी राव ने अपना गुरु मानकर उनको राजगुरु के पद से सम्मानित किया था। पृष्ठ संख्या 191, मृदंगाचार्य कुदव सिंह के समकालीन सुप्रसिद्ध पखावजी तथा तबला वादक जोरावर सिंह जी महाराजा जानको जी राव सिंधिया के शासनकाल में ग्वालियर आकर आजीवन ग्वालियर दरबार के आश्रित कलाकार रहे। वे अत्यंत कुशल संगीतकार माने जाते थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वे स्वर्गीय हुए। पंडित जोरावर सिंह की वंश परंपरा ग्वालियर में ही फली फूली। उनके पुत्र सुखदेव सिंह तथा पौत्र पर्वत सिंह अपने समय के महान कलाकार सिद्ध हुए। वे दोनों सिंधिया राजाओं के आश्रित कलाकार थे। उस्ताद हाफिज अली खां के सरोद तथा पंडित पर्वत सिंह के पखावज की जोड़ी देश भर में प्रसिद्ध थी। उनके तीनों पुत्र माधव सिंह, विजय सिंह तथा गोपाल सिंह भी अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर अग्रसर हैं। इस परिवार के शिष्य परंपरा पंडित नारायण प्रसाद दीक्षित अग्निहोत्री, पुत्र व्यंकट राव, पौत्र शंकर राव तथा शिष्य गणपत राव के नाम भी उल्लेखनीय हैं। पंडित नारायण प्रसाद जी पखावज के उद्भट विद्वान थे। इस अग्निहोत्री परिवार के अतिरिक्त इस परंपरा में पंडित राम प्रसाद, उनके पुत्र पंडित कांता प्रसाद तथा तबला वादक उस्ताद मिट्ठू खां आदि भी उच्च कोटि के कलाकार हुए। यह सभी कलाकार सिंधिया दरबार से संबंधित थे। इन्हीं परंपरा में रामाराव काटे का नाम भी मिलता है। श्री जोरावर सिंह की परंपरा के साथ ही एक दूसरी तबला पखावज की स्वतंत्र परंपरा भी पिछली एक सदी से चली आ रही है, जो गणेश उस्ताद की परंपरा के नाम से प्रसिद्ध है। ग्वालियर के पंडित गणेश उस्ताद, गणेशी उस्ताद, उनके पुत्र दयाराम उस्ताद, दयाराम के भांजे पंडित दाताराम उर्फ दान सहाय आदि कुशल वादक थे। आज भी इनकी परंपरा में दान सहाय के पुत्र नारायण प्रसाद रतौनिया तथा पौत्र रामस्वरूप रतौनिया तथा भोगी राम रतौनिया अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। श्रीमंत माधव राव जी सिंधिया अत्यंत कला प्रेमी थे। उन्होंने संगीत के क्षेत्र ग्रंथों का निर्माण, संगीत सम्मेलनों का आयोजन तथा संगीत के विद्यालयों की संस्थापन में गहरी रुचि लेकर अनेक रचनात्मक कार्य किए। मरीफ नगमात के लेखक राजा नवाब अली के गुरु पंडित बलवंत राय शिंदे माधवराव महाराज के ही आश्रित कलाकार थे। श्रीमंत माधवराव ने सन 1918 ईस्वी में संगीत गुरु पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की प्रेरणा से ग्वालियर में माधव संगीत महाविद्यालय की नींव डाली, जो संगीत की तत्कालीन परिस्थिति में एक महत्वपूर्ण घटना कही जा सकती है। आज भी यह महाविद्यालय ग्वालियर में कार्यरत है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में पंडित भातखंडे की प्रेरणा से ही श्री मनोहर सदाशिव आफले अग्निहोत्री ने ताल प्रकाश नामक तबले की एक पुस्तक की रचना की थी। श्री अग्निहोत्री स्वयं तबला वादन में कुशल थे। आज भी उनके परिवार में यह विद्या संचित है। आधुनिक काल के ग्वालियर के उदीयमान तबला वादकों में श्री राजेंद्र प्रसाद रज्जन, उनके भाई सज्जन लाल, उस्ताद फयाज खां, उमेश कंपूवाला तथा मुकुंद भाले के नाम उल्लेखनीय है। पृष्ठ संख्या 192। पांचवा, दतिया की राज परंपरा। 17वीं शताब्दी के अंत में बुंदेलखंड प्रदेश जब अनेक रियासतों में बट गया, तब दतिया रियासत की स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापना हुई। तब से संगीत की परंपरा में एक नवीन मोड़ का उदय हुआ तथा पखावज के क्षेत्र में एक नवीन इतिहास का प्रारंभ हुआ। वैसे भी बुंदेला नरेश कला प्रेमी थे। बुंदेलखंड के सभी राज दरबारों में कला और कलाकारों के आश्रय का प्रबंध था, किंतु दतिया नरेशों का कला प्रेम तो सविशेष था तथा सन 1948 ईस्वी में दतिया राज्य का विंध्य प्रदेश में विलीनीकरण हुआ। तब तक के 200 से अधिक वर्षों का इतिहास वहां के राजाओं के कला भक्ति का उज्जवल उदाहरण है। महाराजा विजय बहादुर सिंह, मृत्यु सन 1857, महाराजा भवानी सिंह सन 1857 से सन 1907 तथा महाराजा गोविंद सिंह सन 1907 से सन 1948 तक के राज्यकाल के दरमियान संगीत कला का चौमुखा विकास हुआ। पखावज के क्षेत्र में तो कुदऊ सिंह पखावजी तथा दतिया महाराजा भवानी सिंह का नाम संगीत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। संगीत कला की दृष्टि से दतिया में महाराजा भवानी सिंह का शासनकाल सन 1857 से 1907 ईस्वी सर्वोत्तम काल कहा जा सकता है। उनके दरबार में अनेक कलाकारों का उल्लेख मिलता है। दतिया दरबार का संगीत विभाग महकमा अरबाब निषाद के नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें अनेक गायक वादक सेवारत थे। इन कलाकारों में श्री कमलापति, श्री ग्वारिया बाबा उस्ताद भीखन खां, पंजाबी बाबा नारायण दास, श्री गुल्ला नर्तन, श्री चुन्नी लाल मास्टर, उस्ताद रज्जू खां, उस्ताद प्यार खां, गायिका फैजियाबाद बाई, नृत्याचार्य मोहनलाल जी, पंडित छुट्टू गोसाई, गायिका सक्का शक्करबाई, सितार वादक रामदयाल लालमणि पंडा, मृदंग सम्राट कुदऊ सिंह महाराज, जानकी प्रसाद मृदंग वादक, बलवान पखावजी, पर्वत पखावजी, नंदू पखावजी, उसके पुत्र रघुवर, पौत्र रज्जन, धन्नु, उस्ताद तबला वादक आदि के नाम प्रमुख हैं। महाराज भवानी सिंह के दरबारी कला रत्न मृदंग सम्राट कुदऊ सिंह जैसा समर्थ वादक सदियों में पैदा होता है। माँ जगदम्बा की उन पर बेहद कृपा थी। उनके मृदंग वादन की अनेक चमत्कारपूर्ण कथाएं प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा मदमस्त हाथी के समक्ष गजपर्ण बजाकर उसे वश में कर लेने की किंवदंती आज भी जनश्रुति में सुरक्षित है। उनके वादन में जो स्फूर्ति तथा माधुर्य था, उनकी प्रस्तुतिकरण शैली में जो नवीनता थी तथा उन्होंने जो विशाल शिष्य समुदाय उत्पन्न किया था, उसी के फलस्वरूप उनकी मृत्यु के पश्चात उनके नाम से एक नवीन घराना ही चल पड़ा। आज पखावज के जो इने गिने कलाकार भारत में मौजूद हैं, उनमें कुदऊ सिंह घराने का योगदान प्रमुख है। पृष्ठ संख्या 193, छठवां, रीवा दरबार की परंपरा। संगीत परंपरा में रीवा राज्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। दिल्ली जा रहे मियां तानसेन की डोली की को रीवा के रसिक राजा रामचंद्र जू देव द्वारा कंधा लगाने की ऐतिहासिक घटना सर्वविदित है। सन 1833 ईस्वी में महाराजा विश्वनाथ सिंह जू देव राजगद्दी पर विराजे। वे संगीत के रसिक ही नहीं, स्वयं अच्छे संगीतज्ञ एवं साहित्यकार थे। उनका राज पुस्तकालय सरस्वती पुस्तक भंडार बहुत प्रसिद्ध था। उन्होंने संगीत रघुनंदन नामक एक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। देश के अनेक उत्कृष्ट कलाकार उनके दरबार को सुशोभित करते थे। उनमें गायक बड़े मोहम्मद खां ग्वालियर दरबार के भी कलाकार रहे, उस्ताद बख्तावर खां ध्रुपदीय साधु बाबा तथा उस्ताद प्यार खां के नाम उल्लेखनीय है। उस्ताद प्यार खां उच्चतम कोटि के कलाकार थे, जिन्हें लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के गुरु होने का सम्मान भी प्राप्त था। तत्पश्चात के महाराजा रघुराज सिंह जूदेव का राज्यकाल भी संगीत की दृष्टि से गौरवशाली रहा। बड़े मोहम्मद खां के पुत्र मुनव्वर खां तथा प्रसिद्ध सुरबहार वादक दिलावर खां करम अली खां की जोड़ी उनके दरबार में आश्रित थी। उस्ताद दिलावर खां तथा उस्ताद करम अली खां तत्कालीन वाद्यकारों में अद्वितीय माने जाते थे। महाराजा रघुराज सिंह के पश्चात महाराजा गुलाब सिंह एवं महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव का समय आया। इन दोनों ने भी अपने वंश के परंपरागत संगीत संस्कार को यथावत कायम रखा। सातवां, मैहर राज्य की संगीत परंपरा। मध्य प्रदेश का मैहर राज्य विश्वविख्यात है। संगीत शिरोमणि बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मभूमि बने रहने के कारण मैहर अब संगीत एवं कलाकारों का तीर्थ स्थान बन गया है। उस्ताद अली अकबर खां, पंडित रविशंकर, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, पंडित निखिल बनर्जी इत्यादि सैकड़ों महानुभावों का उदय स्थान होने के कारण मैहर विश्व के में आकर्षण का केंद्र है। जीवन की घोर समस्याओं एवं कष्टों का सामना करके तथा अपनी दीर्घ साधना के द्वारा संगीत पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात बाबा अलाउद्दीन खां अपने गुरु उस्ताद वजीर खां की अनुमति से देश का भ्रमण करने निकले। भारत के विविध संगीत सम्मेलनों में कीर्ति अर्जित करने के पश्चात वे महाराजा बृजनाथ सिंह का राजाश्रय प्राप्त करके मैहर आए और सदा के लिए मैहर के ही होकर रह गए। उस्ताद अलाउद्दीन खां ने तबला और पखावज के उपरांत वायलिन, सहनाई, वंशी, सरोद, पाश्चात्य संगीत, स्टाफ नोटेशन एवं गायकी की भी विस्तृत तालीम अनेक विद्वान कला गुरुओं से प्राप्त की, किंतु यहाँ हम उनकी तबला तथा पखावज की साधना के विषय पर ही चर्चा करेंगे। पृष्ठ संख्या 194। उस्ताद अलाउद्दीन खां ने तबले की शिक्षा अपने अग्रज उस्ताद आफताबुद्दीन खां उर्फ फकीर साहब से तथा स्वामी विवेकानंद के बड़े भाई श्री अमृतलाल दत्त उर्फ हब्बोदत्त से पाई थी। पखावज की तालीम उस्ताद अलाउद्दीन खां ने पथुरिया घाट के राजा जोगेंद्र मोहन टैगोर से के दरबार के पखावजी पंडित नंदी भट्ट से पाई थी, जो स्वयं उत्कृष्ट मृदंग वादक श्री मुरारी मोहन गुप्त के शिष्य थे। राजा बृजनाथ सिंह संगीत के सच्चे रसिक थे। वे उस्ताद अलाउद्दीन खां के गंडाबद्ध शिष्य थे। वे अपने विद्वान उस्ताद को बहुत प्यार करते थे। उस्ताद अलाउद्दीन खां को अपनी विविध संगीत प्रवृत्तियों में महाराजा साहब का हार्दिक सहयोग एवं प्रोत्साहन मिला। बाबा द्वारा प्रस्थापित मैहर का ऐतिहासिक संगीत विद्यालय, विद्यार्थियों का छात्रावास एवं छात्रवृत्तियों का प्रबंध तथा मैहर बैंड के विकास एवं प्रगति के पीछे महाराजा बृजनाथ सिंह का योगदान भी अनन्य था। मैहर के राज दरबार में संगीत के कार्यक्रम नियमित रूप से हुआ करते थे, जिनमें बाबा अलाउद्दीन खां, उनके पुत्र परिवार तथा शिष्यगण तथा देश के अनेक कलाकार भी आमंत्रित किए जाते थे। तबला के क्षेत्र में बाबा के शिष्य उस्ताद फुलझड़ी खां, फुलझड़ी का नाम उल्लेखनीय है। फुलझड़ी खां का मूल नाम यार रसूल था, किंतु उनके हाथ में फुलझड़ी की भांति निखरते हुए तबले के बोल सौंदर्य से प्रभावित होकर मैहर नरेश ने उन्हें फुलझड़ी खां की उपाधि से सम्मानित किया था। संगीतानुरागी कुछ छोटी रियासतें। आठवां है छरी। मध्य प्रदेश के कतिपय जमींदारों का संगीत के विकास में उल्लेखनीय सहयोग रहा है, जिनमें छरी के जमींदार श्री महेंद्रपाल भी एक थे। वे संगीत के ज्ञाता तथा कलाकारों के आश्रयदाता थे। सुप्रसिद्ध मृदंगाचार्य मुंशी भृगुलाल वर्मा जी ने के ताल मंजरी, वंशी मंजरी तथा संगीत विनोद आदि ग्रंथों की रचना में जमींदार श्री महेंद्र पाल का काफी सहयोग रहा। नौवां मुलमुला। मुलमुला के जमींदार श्री मान सिंह स्वयं अच्छे तबला वादक थे। उनके वहां अनेक कलाकार आते जाते रहते थे। मुलमुला में श्री मान सिंह तथा पंडित बलदाऊ प्रसाद त्रिपाठी प्रसिद्ध तबला वादक थे। श्री मान सिंह के शिष्यों में श्री रामलाल शुक्ल का नाम उल्लेखनीय है। दसवां किंकरदा। किंकरदा गांव के जमींदार ठाकुर श्रीधर सिंह संगीत के कद्रदान व्यक्ति थे। उनके सुपुत्र ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह तबले के कलाकार हैं। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह ने तबले की तालीम रायगढ़ के सुप्रसिद्ध मृदंगाचार्य ठाकुर जगदीश सिंह दीन तथा उनके पुत्र ठाकुर वेदमणि सिंह से प्राप्त की है। पृष्ठ संख्या 195। ग्यारहवां हैदराबाद दरबार की तबला परंपरा। संगीत के प्रति हैदराबाद के निजाम को जानफेशानी और कद्रदानी सुविख्यात है। वहां गुणग्राही निजामों ने संगीतकारों को सदा आश्रय दिया तथा बाहर से कलाकारों को आमंत्रित करके उनकी कला का सम्मान किया। इस प्रकार संगीत के विकास तथा कलाकारों की उन्नति में हैदराबाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तबले के कलाकारों का तो वह मुख्य अड्डा रहा है। अनेक उत्कृष्ट तबला वादक निजाम दरबार में अपनी कला के प्रदर्शन के लिए उत्सुक रहते थे। इंदौर में सन 1926 ईस्वी में जब महाराजा यशवंत राव महाराजा तुक्कोजी राव के पुत्र गद्दी पर बैठे, तब बहुत से कलाकारों ने इंदौर छोड़कर हैदराबाद दरबार का आश्रय लिया था। इंदौर के उस्ताद मुसाहिब खां कुछ समय के लिए हैदराबाद आए थे और उन्होंने उस्ताद हुसैन बख्श हैदरबख्श से कुछ तालीम भी प्राप्त की थी। उस्ताद मुसाहिब खां निजाम दरबार में कुछ समय तक मुलाजिम भी रहे। बाद में वे इंदौर वापस चले गए थे। उनके दोनों पुत्र उस्ताद बहादुर खां और करमू खां निजाम दरबार के आजीवन कलाकार रहे। उस्ताद मुसाहिब खां के प्रमुख शिष्य उस्ताद मौल बख्श भी हैदराबाद में कुछ समय तक रहे। उनके भाई करीम बख्श बाद में हैदराबाद के ही निवासी हो गए, जो सुप्रसिद्ध तबला नवाज उस्ताद मुनीर खां के पिता थे। यही कारण है कि उस्ताद मुनीर खां हैदराबाद में बहुत समय तक रहे और उनके अनेक शिष्य आए दिन वहां आते रहते थे, जिनमें उस्ताद अहमद जान थिरकवा तथा उस्ताद अमीर हुसैन खां आदि प्रमुख थे। उस्ताद अमीर हुसैन खां तो हैदराबाद के ही रहने वाले थे, वे उस्ताद मुनीर खां के भांजे थे। वैसे उनका कर्म स्थल मुंबई रहा, किंतु अपने जन्म स्थान हैदराबाद में लंबे अरसे तक रहे। उस्ताद मुनीर खां उस्ताद थिरकवा तथा उस्ताद अमीर हुसैन खां के कारण उस बाज का प्रचलन हमें आज भी हैदराबाद में देखने को मिलता है। हैदराबाद दरबार में सहारनपुर के उस्ताद बुंदू खां के सुपुत्र तबला नवाज उस्ताद जंग बख्श खां आश्रित कलाकार थे। उनके गुण की चर्चा तथा कला की प्रशंसा उस्ताद थिरकवा खां तथा उस्ताद अमीर हुसैन खां किया करते थे। मृदंग वादक नाना पांसे के प्रमुख शिष्य पंडित वामन राव चंदौ डकर भी निजाम दरबार के प्रमुख कलाकार रह चुके हैं। वे तबले के सिद्धहस्त कलाकार थे। पांसे जी ने चंदौ डकर को मुख्यतः तबले की शिक्षा दी थी। श्री जगन्नाथ राव भी निजाम के प्रिय कलाकार थे। वे हारमोनियम वादन में तो सिद्धहस्त थे ही, तबले की उत्तम जानकारी भी उन्होंने भी श्री वामन राव चंदौ डकर के शिष्यत्व में ग्रहण की थी। तदुपरांत पंडित वामन राव के छोटे भाई तथा शिष्य पंडित लक्ष्मण राव भी दक्ष कलाकार माने जाते थे। वे मृदंग पुराण में निष्णात थे। पौराणिक कथाओं को वे मृदंग पर प्रस्तुत करते थे। निजाम के दरबारी कलाकार न होते हुए भी वे निजाम के कृपा पात्र थे। उनका मृदंग पुराण हैदराबाद में ही नहीं, दूसरी रियासतों में भी लोकप्रिय था। इंदौर दरबार के श्रीमंत तुक्कोजी राव समय समय पर उनको आमंत्रित किया करते थे। अतः हैदराबाद की तरह ही इंदौर तथा उसके आसपास के प्रदेशों में वे बहुत लोकप्रिय हो चुके थे। पृष्ठ संख्या 196। यद्यपि महाराज तुक्कोजी राव उनको अपने दरबार में नियुक्त करना चाहते थे, तथापि साधु प्रकृति के लक्ष्मण राव इस बंधन में नहीं बंधना चाहते थे। अतः उन्होंने अपने एक सूरदास शिष्य को इंदौर दरबार में नियुक्त कराकर संन्यास ग्रहण कर लिया। पंडित वामन राव चंदौ डकर के एक शिष्य श्री गुरुदेव पटवर्धन थे, जो पखावत सीखते हुए हैदराबाद आकर बस गए थे। पंडित गुरुदेव पटवर्धन विष्णु दिगंबर जी के समकालीन एवं घनिष्ठ मित्र थे। एक अच्छे कलाकार के साथ साथ वे बहुत अच्छे शिक्षक भी थे। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिक्षण कार्य में उनका भी योगदान रहता था। हैदराबाद निवासी पंडित मार्तंड राव श्री चंदव डकर के तीसरे शिष्य थे। तबला तथा पखावज दोनों पर उनका प्रभुत्व था। वे लयकारी में निष्णात थे तथा ताल की कठिन बातों को वे जानते थे। उन्होंने अपने भांजे रंगनाथ काले को सिखाया था, जो हैदराबाद म्यूजिक एंड डांस कॉलेज के प्राध्यापक रहे। पंडित मार्तंड बुआ के दूसरे शिष्य श्री रंगनाथ बुआ देगलूरकर यद्यपि अंबे जोगाई महाराष्ट्र के निवासी थे, वे लंबी अवधि तक निजाम के दरबारी कलाकार रहे। वे भी लयकारी में निष्णात थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार हैदराबाद दरबार में एक स्त्री पखावज वादिका थी, जिनके विषय में सुश्री केसरबाई केरकर ने श्री बामनराव देशपांडे को एक रोचक घटना सुनाई थी। मुझे श्री बामनराव देशपांडे के स्वमुख से उस घटना को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कुछ इस प्रकार है। लगभग 70-75 वर्ष के पूर्व की बात है। एक बार श्रीमती केसरबाई निजाम के आमंत्रण से अपना गायन पेश करने हैदराबाद गई हुई थी। गायन की समाप्ति पर उन्हें पता चला कि निजाम के जनाना खाने में एक बहुत वृद्धा किंतु अत्यंत गुणी महिला पखावज वादिका हैं, जो बेगमों को पखावज सुनाती हैं, सिखाती हैं तथा दरबार के कलाकारों के साथ संगत भी करती हैं। केसरबाई ने तुरंत उस महिला से मिलने की इच्छा प्रकट की। जब वे इन्हें मिली तब पता चला कि वे अति वृद्धा हो चुकी थी और पखावज बजाने में असमर्थ हैं। केसरबाई को उनका पखावज सुनने की बहुत इच्छा थी, किंतु वृद्धावस्था के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी, अतः वे बजा नहीं सकी। किंतु उन्होंने पखावज की अनेक सुंदर परणे पढ़कर सुनाई, जिससे केसरबाई मंत्रमुग्ध हो गई। केसरबाई के कथनानुसार वह महिला पखावजी मृदंगाचार्य नाना पानसे जी की सुपुत्री थी। यद्यपि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है जो सिद्ध करे कि वे नाना पानसे की ही पुत्री थी, तथापि ऐसी उच्च कोटि की महिला कलाकार हैदराबाद दरबार में मौजूद थी। यह हकीकत वहाँ के निजाम के कला प्रेम तथा उनकी गुणग्राही दृष्टि का तथा भारत में महिलाएं भी वर्षों से तबला तथा पखावज बजाती चली आ रही हैं, इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हैदराबाद दरबार की एक दूसरी तबला परंपरा भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसका सिलसिला आज भी मौजूद है। उस्ताद तान रस खां के समकालीन उस्ताद हुसैन बख्श निजाम दरबार के तबला नवाज हो गए थे। वे फरुखाबाद घराने के संस्थापक हाजी विलायत अली के दामाद एवं शिष्य थे। उनके गुण की चर्चा अनेक गुणीजनों ने मुख से सुनने को मिली है। पृष्ठ संख्या 197। उस्ताद हुसैन बख्श औलिया प्रकृति के मस्त कलाकार थे। उनके हाथों में इतना माधुर्य था कि जब वे तबला वादन करते थे तब मानो कोई गा रहा हो, ऐसा आभास होता था। इसीलिए निजाम को उनका तबला प्रिय था। निजाम के आदेशानुसार मियां हुसैन बख्श उनके शयन कक्ष के पास बैठकर पूरी रात तबला बजाया करते थे, जिसे सुनते सुनते निजाम सो जाया करते थे। खां साहब अत्यंत भोले और अनपढ़ व्यक्ति थे, किंतु ईश्वर के प्रति उनका अनुराग अनन्य था। कहते हैं कि रास्ते में चलते चलते पैरों तले आने वाले प्रत्येक कागज के टुकड़े वे इसलिए उठाकर नदी में बहा देते थे कि पता नहीं किस पर अल्लाह का नाम लिखा हो, अतः लोग उन्हें बावला समझते थे। निजाम को अपने इस फकीर कलाकार पर नाज था। हुसैन बख्श ने अपने दामाद अलाउद्दीन खां, जिन्हें अल्लादिया खां भी कहा जाता है, को शिक्षा दी थी। वे भी अपनी कला में बहुत निपुण थे। हुसैन बख्श और अलाउद्दीन खां के शिष्य परंपरा से हैदराबाद में तबले का काफ़ी प्रचार हुआ। आज भी यह परंपरा जीवित है। उस्ताद अल्लादिया खां भी अपने ससुर की तरह निजाम के आश्रित कलाकार थे। उनके दोनों पुत्र उस्ताद मोहम्मद खां तथा उस्ताद छोटे खां ने तबले के क्षेत्र में काफी नाम कमाया। इन दोनों भाइयों ने अनेक शिष्य आज भी तैयार किए हैं जो हैदराबाद में हैं। इस घराने के शिष्य शेख दाऊद का नाम भारत भर में प्रसिद्ध है। शेख दाऊद खां ने लंबे काल तक उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद मोहम्मद खां तथा उस्ताद छोटे खां से शिक्षा पाई थी। उनके पुत्र शब्बीर निसार खां भी तबला वादन में दक्षता प्राप्त कर रहे हैं। उस्ताद दाऊद के प्रमुख शिष्यों में हैदराबाद म्यूजिक कॉलेज के प्राध्यापक श्री नंद कुमार भाट लौंदे, जबलपुर के श्री किरण देशपांडे, मद्रास के श्री विश्वमूर्ति तथा श्री राम जाधव, विजयवाड़ा के श्री प्रभाकर, बंगलोर के श्री गौरांग कोडिकल गुरु नंदन, मैसूर के श्री पी बालकिशन, औरंगाबाद के श्री विजय कुमार अहेरकर, लातूर के श्री रविंद्र कुलकर्णी, हैदराबाद के सर्वश्री लक्ष्मैया ओमकार प्रसाद कैसैया, देहरादून के विजय कृष्ण तथा अमेरिका के डेविड कोटनी आदि प्रमुख हैं। राजस्थान की दरबारी परंपराएं। 12वां, जयपुर दरबार की परंपरा। राजस्थान की कलात्मक भूमि ने हमारे अनेक ललित कलाओं को सुविकसित होने का अवसर दिया है। वहां के राजा महाराजाओं ने सदियों से कला और कलाकारों का पोषण किया तथा उन्हें प्रोत्साहन देकर संगीत को जीवित रखने का उत्तरदायित्व निभाया है। वहां की राजधानी जयपुर का संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों कलाओं का अभ्यास, विकास एवं संरक्षण वहां होता आया है। अतः संगीत के विकास में जयपुर घराने का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है।